नमस्कार, ब्रह्मा कुमारी की फेसबुक लाइव पेशकश में आप सभी का स्वागत है। फेसबुक और यूट्यूब पे हमारे सारे दोस्त ये सीरीज बी द चेंज का हिस्सा बन रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके साथ आपके घरों में जुड़े। और आज क्योंकि वीकेंड है तो वीकेंड पे आप एक अलग टाइम पे दोपहर में 11 से 12 के बीच में हमारे साथ जुड़े हैं और जहां पर हम आपसे बातचीत करेंगे। बदलाव के इस दौर में अपने आप को बदलने में हमें अगर मदद की जरूरत है तो मदद ऑफर करने की छोटी सी कोशिश ब्रह्मा कुमारीज कर रहा है। और ब्रह्मा कुमारीज के सोशल मीडिया हैंडल पर फेसबुक और यूट्यूब पर आप इस कार्यक्रम को लाइव देख सकते हैं और आप अपने लाइव सवाल हमारे स्पिरिचुअल मास्टर से पूछ भी सकते हैं। आज हमारे बीच ब्रह्मा कुमारीज के स्पिरिचुअल मास्टर, आज हमारे स्पिरिचुअल रिसोर्स के रूप में ब्रह्मा कुमारी सिस्टर कल्पना दीदी जी जुड़े हैं, जो पेशे से एक स्पिरिचुअल और वेलबींग काउंसिलर है ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर माउंट आबू में, और ब्रह्मा कुमारी के साथ लगभग 30 साल से भी ज्यादा का उनका जुड़ाव है। तो आइए करते हैं उनसे बातचीत और आपके सवाल और उनके जवाब इस कार्यक्रम में जिसका नाम है बी द चेंज। दीदी, आपका स्वागत है।
थैंक यू श्रीनिधि भाई, बहुत खुशी
जी। हम हर दिन पिछले 10 दिनों से कोशिश कर रहे हैं कि लाइव क्वेश्चन आंसर्स करें और बहुत सारे हमारे दोस्त फेसबुक पे और यूट्यूब पे जुड़ भी रहे हैं और हर दिन बहुत सारे सवाल जवाब करते भी हैं। तो कुछ सवाल जो कल के भी हमारे पास पेंडिंग थे उनमें से कुछ सवाल मैं आज भी लेना चाहूंगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 घंटे का वक्त होता है और उसमें बहुत सारे दोस्त होते हैं और बहुत सारे सवाल होते हैं। कल के सवालों में से एक सवाल के साथ मैं शुरुआत करना चाहता हूँ, क्योंकि अब ये समय बदल रहा है तो बहुत सारे लोगों को इन बदलावों को डील करने में अलग अलग तरीके के रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं। मैं समझता हूँ क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल काउंसलर हैं, आप वेलबींग के बारे में भी काउंसलिंग करते हैं, लोग आपके पास आते हैं, तो आपने भी बहुत सारे लोगों में देखा होगा कि ये जो समय चल रहा है इस समय के हिसाब से लोगों को अलग नीड्स उभर के आई हैं जो उन्होंने अपने एस्पेक्ट को भी समझा नहीं था कि उनके साथ भी ऐसा होगा। उन लोगों को भी कुछ ऐसे अपने अंदर की चीजों को डील करने में दिक्कत आ रही होगी, तो आप ऐसे लोग जब आपके पास आते हैं तो आप क्या कहते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग यही कह रहे थे कल कि हमारे साथ तो पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, ये पहली बार ऐसा हो रहा है, लाइफ में कभी हमने इस चीज को देखा नहीं था, बट आजकल मुझे ये चैलेंजिंग लग रहा है अपने आप को डील करना, अपने मन के अंदर बहुत विचार आ रहे हैं, ऐसे कहने लगे। तो आप इस चीज के लिए क्या कहना चाहते हैं, ये चीज नॉर्मल है या फिर इसके लिए मुझे कुछ करने की जरूरत है?
जी, बदलाव तो हमारे जीवन में हमेशा से ही नॉर्मल रहा है और नेचुरल रहा है। हमने देखा है कि प्रकृति समय प्रति समय अपने आप को बदलती रहती है और प्रकृति के साथ हमें भी अपने आप को समय प्रति समय बदलने की आदत डालनी ही पड़ती है। जैसे हम देखते हैं कि बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक और मृत्यु तक हमारे शरीर, हमारे मन, हमारी पर्सनालिटी में भी लगभग हर 10 साल के बाद कुछ न कुछ चेंजेस आते हैं। हमारे फीचर्स भी थोड़े बदल जाते हैं, हमारे हेल्थ रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स है वो भी चेंज हो जाते हैं। तो बदलाव प्रकृति का नियम है और बदलाव के साथ हमें अपने आप को बदलने की आदत अगर हम समय पर नहीं डालते हैं तो उस व्यक्ति को दिक्कत होती है, परेशानी होती है बदलाव के साथ चलने में। तो हर चीज में बदलाव अगर नेचुरल है, नैसर्गिक रूप से है, तो हमें भी अपने आप में बदलाव की आदत डालनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति को घर बदलना पड़ता है उनकी सर्विस के अकॉर्डिंग, अगर ट्रांसफर होते रहते हैं तो हर 3 साल बाद उनको सामान पैकअप करके दूसरी जगह पर जाकर नए से बसाना पड़ता है। अब उस बदलाव के साथ बहुत सारी चीजें साइकोलॉजिकली हमारे ऊपर असर करती है, परंतु एक बार उस चीज की आदत हो जाती है तो हम उस बदलाव में कुछ ना कुछ अच्छाई देखने लगते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारी जर्नी है लाइफ की, हम अकेले चलते हैं, लेकिन हमारे जीवन में बहुत सारे लोग हमारे जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, हमारे साथ जुड़ते जाते हैं और सभी का स्वभाव संस्कार एक जैसा नहीं होता है। तो नए नए लोगों के साथ मिलकर, उनसे उनके साथ रहकर हमें उनके तरह से एडजस्ट करने की भी आदत डालनी पड़ती है। तो हम जीवन के सफर में अकेले निकले हैं, परंतु साथ में जो कुछ भी जुड़ते जाते हैं लोग हमारे साथ उस कारवा में, तो उनके साथ चलने की हम अपने आप को आदत डालते हैं। तो बदलाव की इस प्रक्रिया को अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, तो हमारे लिए वो चैलेंज बन जाती है। लेकिन अगर हम आसानी से इस चीज को स्वीकार कर लेते, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जो COVID-19 का पेंडेमिक हमारे सामने प्रकृति ने डाल दिया है, हमने उसे इनवाइट नहीं किया था, अपने आप आया है। आप सोचिए कि क्या आप उसमें कुछ बदलाव ला सकते हैं? प्रकृति के इस चैलेंज को आप अपनी शक्ति से बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते ना। तो जिस चीज को आप बदल नहीं सकते हैं, उसे एक्सेप्ट करने में ही आपकी भलाई है। और दूसरी बात यह है कि जो भी कुछ हो रहा है हमारे आसपास या हमारे साथ, उसमें मेरा कल्याण छिपा हुआ है, मेरी भलाई छिपी हुई है। अगर ये भावना मैं अपने अंदर रखती हूं, तो मुझे वो बदलाव कुछ ना कुछ पॉजिटिव देकर जाता है, कुछ सिखा कर जाता है, कुछ ऐसे चेंजेस मुझ में आ जाते हैं जिससे कि मैं अपने आप को नए सिरे से जानने लगती हूँ। तो बदलाव हमेशा ही हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है, इसलिए बदलाव का स्वागत करना चाहिए, ना कि उसके साथ रिलक्टेंट होना चाहिए। तो मेरे पास जो लोग आते हैं, आजकल बहुत सारे लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि इस नई लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने के लिए वो मेंटली प्रिपेयर नहीं थे। लेकिन मेंटली प्रिपेयर होने के लिए कितना टाइम लगता है? जब फर्स्ट लॉकडाउन अनाउंस हुआ, उसी समय हमें मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए था कि अब ये इतना समय चलेगा, पता नहीं कब तक चलेगा, मुझे अपने आप को बदलना होगा। तो मैंने अपनी पर्सनल प्रैक्टिस से यही सीखा कि जिस दिन संडे के 23 मार्च को शायद पहला एक दिन का लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, उसी दिन मैंने अपने डेली टाइम शेड्यूल को रिवाइज किया, चेंज किया कि अब मेरे पास थोड़ा ज्यादा टाइम बचेगा, अब शायद परिस्थितियां इस तरह से बदलेगी, तो मुझे अपने डेली रूटीन में इस तरह के चेंजेस के साथ इस तरह का अडॉप्शन करना होगा। कुछ नई चीजें मैंने अपने डेली रूटीन में ऐड की जिनको मैं पहले नहीं कर पाती थी। तो फर्स्ट डे ही हमने अपना टाइम शेड्यूल डिजाइन किया और उसके साथ चलने का अभ्यास करने लगी। तो मन से बदलने के लिए आपको एक सेकंड लगता है कि एज फॉर एज यू एक्सेप्ट कि ये होना है, तो अपने आप को बदलने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तुरंत आप बदल सकते हैं।
एक सवाल अभी हमारे साथ आया है, डॉक्टर गुलाब राय इनका नाम है, और उन्होंने यही सवाल पूछा है और कहते हैं कि हाउ टू डील विद साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स जो हैं ये COVID-19 के कारण, उसको हमें कैसे डील करना है, ये पूछते हैं।
हमें पर्याप्त समय मिला है साइकोलॉजिकली अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए। जो 2 महीने का टाइम हमारे पास था, उसमें अगर हम कॉन्सेंट्रेशन एंड कॉन्टेम्पलेशन के अभ्यासी रहे होंगे, कॉन्सेंट्रेशन मीन्स एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाना और कॉन्टेम्पलेशन मीन्स चिंतन का अभ्यास बढ़ाना। इसका मतलब है जो भी चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं, अगर हम अपने मन को कॉन्सेंट्रेशन की आदत है, एकाग्रता और फोकस करने की आदत है, और हम उस परिस्थिति का चिंतन करते हैं, चिंता नहीं चिंतन, 2 एस्पेक्ट है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। जब हम किसी बात की चिंता करते हैं, तब हम उसके बारे में वरिड होते हैं और बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं, परंतु चिंतन की प्रक्रिया वो है कि हम उस परिस्थिति के बारे में जो कुछ किया जा सकता है, सॉल्यूशंस के बारे में सोचते हैं, उसको कैसे डील करना है, उसकी तरफ हमारे विचारों की एनर्जी को हम डाइवर्ट करते हैं। तो अगर हमने चिंतन किया होगा और हमने एकाग्रता का अभ्यास किया होगा इन 2 महीने के दौरान, तो हमारे लिए जो ये COVID-19 का सिचुएशन हमारे सामने है, उसके चले जाने के बाद भी हमारी लाइफस्टाइल में कुछ ऐसे चेंजेस आ गए होंगे कि जिनको अपनाकर हम हेल्दी लाइफस्टाइल लीड कर रहे होंगे, मेंटली फिजिकली एंड सोशली आल्सो। लेकिन इसमें स्पिरिचुअल एस्पेक्ट बहुत अधिक काम करता है। अगर इस 2 महीने में हमने अपने स्पिरिचुअल एस्पेक्ट अर्थात मेडिटेशन की प्रैक्टिस को जारी रखा होगा या थोड़ा सा इंक्रीज किया होगा, तो आफ्टर ये जो पेंडेमिक है, उसके बाद के साइकोलॉजिकल इश्यूज है, उसके साथ डील करने में हमें काफी कुछ मदद मिलेगी। तो मैं समझती हूँ कि अभी भी टाइम नहीं गया है। चलो 2 महीने का टाइम आपने बिता दिया, अब भी हमारे पास थोड़ा टाइम है, चौथा लॉकडाउन शुरू होगा कुछ नए इसके साथ, नियमों के साथ, उसमें हम अपने आप को किस तरह से ढाले ये अभी से हम चिंतन करें और उस पर फोकस करें, दिन हर दिन अपने आप को एक स्टेप आगे बढ़ाएं कुछ पॉजिटिव करने में, तो फिर आफ्टर इफेक्ट्स को हम आसानी से डील कर सकते हैं।
तो आप ये कह रहे हैं कि हमें तैयारी करने की जरूरत है, कि चलो अगर हम पहले से तैयारी नहीं भी कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं, बट अभी हमें प्लानिंग करने की जरूरत है कि हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम है तो उसके लिए हमारे पास एक स्ट्रैटेजी हो, कुछ प्लान हो। लोग सोचते हैं कि प्लानिंग बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए होता है, बट ऐसा नहीं है। अगर आपका लाइफ भी है, अगर आपका डे टू डे लिविंग में कुछ बदल रहा है, उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। और मैं सोचता हूँ हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने कभी इसके बारे में नहीं सोचा, हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, तब तक चल जाएगा, और बिना प्लान किए हुए हम बहुत सारे नेगेटिव हैबिट्स में चले गए, जैसे देर से सोना, मील के टाइमिंग्स पे ध्यान नहीं देना क्योंकि अभी घर पे ही है, एक्सरसाइज नहीं कर पाना क्योंकि हम जिम नहीं जा पा रहे हैं, या फिर हम बाहर वॉक पे नहीं जा पा रहे हैं, तो हमारा एक्सरसाइज का रूटीन का गड़बड़ा जाना, ऐसे बहुत सारी चीजें बदल गई जिसके लिए हमने प्लानिंग तो नहीं की थी, बट वो रॉन्ग साइड पे खिसक गए हमारी। और पिछले कुछ दिनों में ये भी सुन रहा था कि लोगों का शेड्यूल डिसरप्ट होता है। अभी पूजा कुमार जी भी ये फेसबुक से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं और वो ये कहते हैं कि सारा शेड्यूल गड़बड़ा गया है, नोबडी स्लीप्स ऑन टाइम, नोबडी गेट्स ऑन टाइम। तो ये वर्क फ्रॉम होम होना या स्कूल नहीं खुलने की वजह से, बच्चे नहीं जा पाने की वजह से, घर की जो गृहिणियां हैं, माताएं बहनें हैं, उनके साथ भी ये हो रहा है, वर्किंग वुमेन के साथ भी हो रहा है, और होम मेकर्स के साथ भी हो रहा है। तो ये जो शेड्यूल का गड़बड़ाना हो रहा है, इसको भी लोग ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप बताएं कि शेड्यूल को ठीक करने के बारे में क्या किया जाए।
जब हमारे पास लोग आते हैं काउंसलिंग के लिए, तो बहुत सारे सवाल हम उनको पूछते हैं उनके लाइफस्टाइल से रिलेटेड। उसमें एक इम्पॉर्टेंट सवाल हम उनको पूछते हैं, आप कितने बजे रोज सुबह उठते हैं और कितने बजे सोते हैं। तब बहुत सारे लोगों का ये जवाब होता है, ओ 6 बजे, या कभी 7 बजे, या कभी 8 बजे उठते हैं, कभी 10 बजे सोते हैं, कभी 12 बजे सोते हैं। तो हम उनको कहते हैं कि अगर आप ये एक एस्पेक्ट जीवन का ठीक कर लेते हैं कि रोज मुझे उसी समय पर उठना है और रोज उसी समय पर सोना है, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर ये एक एस्पेक्ट अगर हम अपने लाइफ का ठीक करते हैं, तो हमारा बॉडी क्लॉक जो है, पूरा फिजिकल और मेंटल सिस्टम हमें कोऑपरेट करने लगता है, और उसके कारण से बहुत सारी चीजें, आप छोटी बड़ी चीजें लाइफ की डील कर सकते हैं। तो इस एक चीज के लिए हमें डिटरमाइंड होना पड़ेगा कि मुझे रात को मेडिटेशन करके इतने बजे ही सोना है, स्टॉप मतलब स्टॉप, इसके बाद मुझे जागना नहीं है, और सुबह मुझे इतने बजे ही उठना है। फिर वो थोड़ा सा लेट भी हो सकता है, अगर आपके सुविधा के अनुसार आप 6 बजे उठते हैं, 7 बजे उठते हैं, 8 बजे तो किसी को भी उठना नहीं चाहिए, मैं समझती हूँ, तो 6 या 7 बजे आप उठते हो तो फिक्स कीजिए टाइम को, तो बहुत सारी चीजें आपकी ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगी। तो सोने और उठने के टाइम को फिक्स कर ले, और जो हमारा स्क्रीन टाइम है उसके लिए भी हम टाइम अलॉट करें खुद को, क्योंकि हमें खुद को चलाना है, खुद को ट्रीट करना है, खुद को सिखाना है, तो हमारा स्क्रीन टाइम भी हम अपने लिए डिसाइड करें कि मुझे इतना ही टाइम स्क्रीन पर स्पेंड करना है। और अब जो टाइम मिला है हमें, उसके लिए हम जो नई चीज ऐड करना चाहते हैं, जैसे एक्सरसाइज रूटीन है, तो वो मॉर्निंग में हम अपना एक्सरसाइज रूटीन रख ले, तो उसको हम कई बार कहते हैं कि ये मी टाइम है, मैं अपने साथ बिताने वाला मेरा टाइम, उस मी टाइम में मैं अपनी हॉबीज के साथ, खुद के साथ टाइम स्पेंड कर सकती हूँ, कुछ एक्सरसाइजेस कर सकती हूँ, रीडिंग है जो बहुत समय से पेंडिंग पड़ा है, सोशल मीडिया के इतने विस्तार के कारण हम पढ़ना भूल गए हैं, तो कुछ किताबें हम पुरानी निकाल के उनको साफ करके उनसे पढ़ना शुरू करें। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जो मैं लोगों के साथ शेयर करती हूँ अक्सर, वो है लिखना। लिखना एक साइकोथेरेपी है जो हमें मेंटली सिस्टमैटिक बनाती है, हमें लिखने की आदत छोड़ नहीं देनी चाहिए। अक्सर ये देखा जाता है कि स्कूलिंग कंप्लीट होने के बाद ऑफिस में अगर आपको बहुत जरूरी हो तभी आप लिखते हैं, अदरवाइज आप लिखने की आदत को छोड़ देते हैं। परंतु उंगलियों में पेन पकड़कर हम जो कुछ भी पेन डाउन करते हैं उसका हमारे मन पर, हमारे इमोशन पर, हमारे फीलिंग्स पर बहुत गहरा असर होता है। इसलिए हम कुछ ना कुछ लिखें अपनी फीलिंग्स को। अगर नेगेटिव फीलिंग्स भी है तो हमें उससे, अगर हम उन्हें लिख डालते हैं तो वो एक टाइप ऑफ रिलीज होता है या फिर एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन होता है जिसके कारण हम उनके साथ डील करने के लिए कैपेबल हो पाते हैं। इसीलिए लिखने की आदत डालें। थोड़ा टाइम जब आप लिखते हैं तो वो टाइम आप देखेंगे कि वैसे सोचकर बोलने में आपको मुश्किल नहीं लगता है, बट वही बोली हुई चीज को आपको लिखने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसीलिए लिखना बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहता है। तो मेरा सभी से यही एक रिक्वेस्ट रहेगा, सुझाव तो नहीं मैं कह सकती हूँ, कि आप लोग उठने और सोने का टाइम फिक्स कर ले और एक्सरसाइज रूटीन अपने डेली स्केड्यूल में ऐड कर ले, रीडिंग ऐड कर ले, लिखना कुछ शुरू कर दे। यही लिख सकते हैं कि 2019 में हमने इस कोविड नाम के पेंडेमिक को फेस किया। आपने सुना है बहुत सारे लोग डायरी लिखने के आदि होते हैं और उनकी ही डायरियों से कई सारे हिस्ट्री के सवाल जवाब या हिस्ट्री की बातें हमें पता चलती हैं। तो क्यों ना आज की डेट में हम आज की बातें, जो कुछ हो रहा है प्रकृति में, उसको लिख डाले। दो लाइनें, चार लाइनें बहुत नहीं। और एक बहुत सुंदर अभ्यास हम कराते हैं हमारे क्लाइंट्स से, वो है राइटिंग लेटर टू गॉड। रात को सोने से पहले आज के दिन के लिए एक तो शुक्रिया अदा करें परमात्मा से कि आज का सारा दिन मुझे इतना खूबसूरत मिला जिसमें मैंने कुछ कोशिश की नया करने की, जिसमें मुझे सक्सेस मिला या नहीं भी मिला कुछ कोशिशों में। तो सारी बातें हम परमात्मा के साथ शेयर करें, उनको लिख डालें। ये जो हमारा बॉन्डिंग है भगवान और हमारे बीच का, जो लेटर्स के साथ शुरू होता है, वो बहुत बहुत खूबसूरत लगता है। तो हम लेटर लिखे परमात्मा को रात में सोने से पहले कि हमने सारे दिन में क्या किया, क्या नहीं किया, क्या रह गया क्या कल करेंगे। तो भगवान के साथ एक प्यारा सा सुंदर सा रिश्ता बनाने का एक बहुत अच्छा माध्यम बन जाता है।
दीदी, हमारे पास एक और प्रश्न है, सुमिता जी सवाल पूछते हैं। मैं हमेशा से पढ़ लिख कर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना चाहती थी, पर पढ़ते पढ़ते शादी हो गई, फिर एक साल टीचिंग किया, फिर उसके बाद फैमिली का प्रेशर आया, तो तब आफ्टर प्रेशर मैंने जॉब छोड़ी, फिर दो बच्चे लाइफ में आए, देन अगेन आई ट्राइड हार्ड टू सपोर्ट माई फैमिली, मैं फिर से जॉब शुरू करूं, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, फिर मुझे कोई भी सपोर्ट नहीं मिला फैमिली से। आज भी मुझे ये चाहत है जो मुझे भीतर से कमजोर बना रही है कि मैं कुछ करूं, तो इस चीज को मैं कैसे सॉल्व करूं या कैसे मैं पॉजिटिव रहूं उसके बाद।
मैं स्मिता जी से एक प्रश्न पूछना चाहती हूं जो कि अक्सर हम अपने क्लाइंट से पूछते हैं कि आप अपने आप से कितना प्यार करते हैं। 0 से 10 तक के नंबर्स में आप अपने आप को नंबर दीजिए कि आप खुद से कितना प्यार करते हैं। अब खुद से प्यार करना क्या क्या होता है, कैसे हम खुद से प्यार करेंगे, तो सबसे पहले मुझे अपने आप को जानना होगा, मेरी कैपेसिटीज को, मेरे पोटेंशियल्स को, मेरे स्किल्स को, मेरे एजुकेशन को, मेरे थिंकिंग पैटर्न को, मेरे बिहेवियर को, हर चीज को मुझे अपने बारे में जानना होगा। यही ब्रह्मा कुमारी इसमें जो पहला लेसन कराया जाता है सेल्फ रियलाइजेशन का, इसमें हम अपने बारे में सब कुछ जानने लगते हैं और मेरी पहचान मुझे ही अलग से होने लगती है। अगर आप सेल्फ रिफ्लेक्शन करेंगे थोड़ा टाइम, तो आपको पता चलेगा कि मेरे थॉट्स धीरे धीरे सिस्टमैटिक होते जा रहे हैं, क्रिएटिव होते जा रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव होते जा रहे हैं, और मैं पहले जिन कामों में मुझे ज्यादा टाइम लगता था, अब मैं वो काम थोड़े समय में बहुत जल्दी कर पा रही हूँ और मेरे पास समय की बचत हो रही है। तो चाहे आपकी लाइफ में आपका परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, फैमिली को सपोर्ट करना है, लेकिन सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है वो आपकी खुद की। तो आपको खुद को समय देना होगा, खुद से प्यार करना होगा और खुद के लिए ऐसा समय निकालना होगा जब आप अपनी हॉबीज पर ध्यान दें, जब आप अपने विचारों की पॉजिटिविटी पर ध्यान दें, अपने इमोशंस और बिहेवियर को ठीक करने के प्रयास में लग जाए। जब हम ऐसा अपने आप से जुड़ने लगते हैं, खुद से प्यार करने लगते हैं, तब जो भी काम हम दूसरों के लिए करते हैं वो खुशी से करते हैं, प्यार से करते हैं, हमें वो बोझ नहीं लगता है क्योंकि हम खुद से जुड़े हुए हैं। तो मैं अक्सर एक डायग्राम बना के लोगों को समझाना चाहती हूँ कि आप हमेशा अपने आप को सेंटर में रखिए और फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरफ, आपके बच्चे एक तरफ, आपका हस्बैंड एक तरफ, आपका प्रोफेशन एक तरफ, आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक तरफ। जब जब भी अपनी कैपेसिटीज को आप इन सभी दायरों में एक्सटेंड करती है, तब हर बार वापस लौटना न भूले। मैंने बच्चों के प्रति अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा किया प्यार से, अब मुझे वापस अपने पास लौटना है। वो लौटने का एक मिनट भी हो सकता है, आधा मिनट भी हो सकता है, या 10 मिनट भी हो सकता है। बस जब मैं अपने आप में लौट जाती हूँ, तब मैं खुद में क्या महसूस कर रही हूँ, मेरी सोच कैसी चल रही है, मेरा एहसास क्या है, मैं उसको जानने की कोशिश करती हूँ। अगर मैं बच्चों के लिए खाना बनाती हूँ आज अच्छे से और मैं थक जाती हूँ, तो मुझे लगता है कि बच्चे खाने को अप्रिशिएट करें और मुझे उससे खुशी होगी, परंतु बच्चे अप्रिशिएट नहीं करते हैं, वो तो रोज की तरह से जल्दी जल्दी में खाकर चले जाते हैं, फिर आपकी थकान और बढ़ती है। अब आपको अपने आप से पीछे मुड़कर सवाल पूछना चाहिए, ये खाना बनाना मैंने बच्चों के लिए किया था या अपनी खुशी के लिए किया था? अगर मैंने अपनी खुशी के लिए किया था तो मुझे उनके अप्रिसिएशन की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं वैसे ही खाना बनाकर खुश हूं। तो हर बार जब अपनी कैपेसिटीज को आप एक्सटेंड करते हैं दूसरों के लिए, तब उस समय वापस लौटना न भूले कि मैंने उससे क्या महसूस किया। अगर मैं अपने फैमिली को सपोर्ट कर रही हूँ कमाकर, तो क्या उसमें मुझे खुशी मिल रही है? अगर मैं खुश नहीं हूं तो समझना चाहिए कि मेरा अपने आप से प्यार नहीं है या मेरी फैमिली से प्यार नहीं है जिनके लिए मैं कर रही हूँ। तो दोनों ही तरफ से मैं लॉस महसूस करती हूँ, तब थकान ज्यादा होती है और टाइम कम होता है। तो इसलिए लौटना न भूले अपने आप में वापस, जब भी आप एक्सटेंड करते हैं अपनी कैपेसिटीज को।
सही बात है दीदी, जब आप ये बात कहते हैं तो ये चीज समझ में आता है कि हम बहुत बार सेल्फलेस होने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि हम दूसरों का ज्यादा ख्याल रखने की कोशिश करेंगे तो फिर सारी चीजें ठीक होंगी। हम अपनी खुशी को सैक्रिफाइस करके दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं। दूसरों को खुश करना अलग बात है, बट अगर आप खुद खुश है ही नहीं तो आप खुशी नहीं देख सकते। आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि अपने आप पे वापस लौटना सीखें। एक और सवाल है जो हमारे साथ है, सुनंदा वर्मा जी सवाल पूछते हैं, इस लॉकडाउन में फैमिली में सबसे ज्यादा महिलाएं प्रभावित हो रही हैं, उनको सबका ध्यान रखना है, साथ ही फैमिली मेंबर्स जो डिप्रेशन में आ रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, ऐसे माहौल में वो अपना मनोबल कैसे बनाए रखें? ऐसा सुनंदा वर्मा जी फेसबुक से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं और ये प्रोग्राम देख रहे हैं, वो ये सवाल पूछते हैं।
सुनंदा जी से मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि जब भी कोई नई चीज फैमिली में आती है तो क्या आप फैमिली मीटिंग करती हैं? फैमिली के सभी मेंबर्स को बुलाकर उनसे उसके बारे में बात करती है, डिस्कशन करती है कि अभी हमारे सामने एक नया प्रकार का चैलेंज आया है और इसमें हम सबको कॉन्ट्रीब्यूट करना है। किस तरह से कॉन्ट्रीब्यूट करना है हम सबको? तो मैं तो खाना बनाने की जिम्मेदारी लूंगी, तो आप घर में जो सारे सदस्य हैं वो लोग कौन कौन सी जिम्मेदारी लेंगे वो बताएं, अपने मन से जो भी जिम्मेदारी लेना चाहे और वो पूरी जिम्मेदारी आपकी। तो हर बार जब भी कुछ नई चीज फैमिली में आती है तो महिलाएं अपने ऊपर प्रेशर महसूस करती है क्योंकि वो अपनी फैमिली मीटिंग के साथ असर्टिवनेस के साथ अपनी बात को नहीं रख पाती है, या वो सब समझती है कि मैं शोषित हूं या मुझे ही सब कुछ करना है। कई महिलाओं को ये होता है कि घर के काम, बाहर की सारी चीजें मैं ही करूं। अगर वो किसी की हेल्प लेती है तो उसमें वो 10 नुक्स निकालती है कि अगर बच्चों ने बर्तन मांजे हैं तो वो देखेंगे कि बर्तन अच्छी तरह से साफ नहीं हुए हैं तो वो खुद मांजने बैठ जाएंगी। तो इसमें महिलाओं की भी कुछ गलतियां हैं जो उन्हें अपने आप में सुधारनी चाहिए कि अगर नए सिरे से मेरे बच्चे बर्तन मांजना सीख गए हैं तो उनको क्लीनलीनेस लाने में दो चार वक्त लग सकता है, दो चार बार में वो सीख सकते हैं, तो मुझे उस समय पेशेंस बनाए रखना है और खुद करने ले लग जाना है, लेकिन उनसे ही करवाना है थोड़ा मॉडिफिकेशन के साथ। और उस समय जब आप उनसे बात करती है कि आपने कल बर्तन तो साफ किए थे लेकिन थोड़ा सा उसमें कमी रह गई थी, तो उसके लिए सबसे पहले उनकी प्रशंसा करें, वाह वेरी गुड, आपने कल तो बहुत अच्छा काम किया, थोड़ा सा इसमें ये इम्प्रूवमेंट लेके आ जाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो हमारे ब्रह्मा कुमारी इसमें एक कहानी हम हमेशा सुनते आ रहे हैं कि कुम्हार जब शेप देता है मटके को अपने उस चक्र पर, तब उसे अंदर से सपोर्ट करके मटके को और ऊपर से उस पर थपथपाता है। तो हमारे आसपास के लोग हैं, चाहे वो बड़े हैं या छोटे हैं, वो चाहते हैं कि हमारे काम का एप्रिसिएशन हो, और फिर जब एप्रिसिएशन करने के बाद हम उनको कहते हैं कि थोड़ा सा इतना सा बदलाव आपको लाने की आवश्यकता है, तो वो काम और अच्छे से और हम उमंग उत्साह से करने लगते हैं। तो महिलाओं को चाहिए कि अपने परिवार में ड्यूटीज को डिस्ट्रीब्यूट करें, सारी जिम्मेदारी खुद पर ना ले, बच्चे जो फ्री है, पति जो फ्री है, जो भी हमारे घर के मेंबर्स है उनको बांट दे जिम्मेदारी को और खुद रिलैक्स करें। जो आपको जिम्मेदारी मिली है आप उसे अच्छी तरह से निभाएं, और जो उनको मिली है उसमें हम टोका टाकी नहीं करें। बच्चे तब परेशान होते हैं जब माँ बाप उनके काम किए हुए काम में टोका टाकी करते हैं या करेक्शन करते हैं। करेक्शन करने का भी तरीका होना चाहिए, बहुत प्यार से उनसे काम करवा लेना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमें महिलाएं जो हमारी ज्यादा प्रेशर में आ जाती है वो थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कर, इनफैक्ट उनको अपने लिए टाइम मिलेगा, वो खुद को देख पाएगी, कभी उन्होंने दोपहर में आराम नहीं किया होगा अब वो दोपहर में आराम कर सकेंगी, कभी उन्होंने कुछ नीटिंग आदि हैंडीक्राफ्ट के काम किए होंगे, बहुत समय से नहीं किए होंगे, अब वो उन कामों को फिर से शुरू कर सकेंगी। किसी को रीडिंग की, कोई महिलाएं मैं जानती हूँ ऐसी महिलाओं को जिनको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है परंतु परिवार की जिम्मेदारियों के कारण उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया है। अब समय है कि हम जिम्मेदारियों को बांट लें और पढ़ने के लिए फिर शुरुआत करें। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, किसी भी उम्र में 50-60 साल की उम्र में भी हम दोबारा से पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। मेरी और एक राय है महिलाओं के लिए कि वो नए तकनीकी साधनों को यूज करना भी सीख ले। कई बार महिलाएं मोबाइल जैसे छोटे से साधन को यूज करने के लिए डिपेंडेंट फील करती है, तो मुझे ऐसे लगता है कि कंप्यूटर जैसी लेटेस्ट चीजें और मोबाइल जैसे उपकरण को हैंडल करना सीखे और ये नई कलाएं सीखकर वो अपने आप में उमंग उत्साह ला सकती हैं। फैमिली को तो सपोर्ट करना ही है परंतु फैमिली से सपोर्ट लेना भी है, उसके लिए हम अपने आप को, अपने माइंड को थोड़ा सा ब्रॉड बनाएं और सपोर्ट लेना सीखें।
बहुत ही अच्छी बात है। मैं पिछले कुछ दिनों से जो सुन रहा हूँ, बहुत सारे हमारे स्पिरिचुअल मास्टर्स ने ये बात कही कि मदद लेना सीखें, मदद मांगना सीखें। मदद मांगना कमजोरी की निशान नहीं, कमजोरी का निशान नहीं है, मगर मदद मांगना एक स्ट्रेंथ है। वो आपके अंदर के बल को बताता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कि आप मदद के लिए भी लोगों से अप्रोच कर सकते हैं। और मैं पिछले दिनों न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, उसमें एक आर्टिकल था बॉयज इन द किचन, उन्होंने कहा कि जेंडर इक्वालिटी अचीव करने के लिए बहुत अच्छा समय है अभी। अगर घर पे आपके लड़के हैं, आपके हस्बैंड हैं या जो भी पुरुष वर्ग के लोग हैं, उन सभी को भी किचन में हाथ बटाना, घर के काम में हाथ बटाने के लिए उनको प्रेरित करें और उनको बोले कि भाई ये सब कुछ अब हम नहीं कर सकते, सभी लोगों को ये काम करना ही है। तो जैसे लोग ज्यादा ज्यादा कामों में सारी चीजों को करने लगेंगे तो फैमिली की बॉन्डिंग भी बढ़ेगी और जेंडर इक्वालिटी भी क्रिएट होगा कि लोगों को समझ में आएगा कि दूसरों का काम कितना मुश्किल होता है। एक और सवाल है, सविता श्रीवास्तव जी फेसबुक से हमारे साथ जुड़े हैं, वो कहते हैं मेरा बेटा 20 साल का है और उसे बहुत जल्दी गुस्सा आता है और वो आपे से बाहर हो जाता है, मैं क्या करूं जिससे वो जल्द से जल्द शांत हो, ये इनका सवाल है।
बच्चे के इस गुस्से के कारणों को जानना होगा आप नाम क्या बताया आपने इनका, मैं भूल गई, सविता जी, आप अपने बच्चे का सबसे पहले हेल्थ चेकअप करा लीजिए और देखिए कि कहीं वो वीक तो नहीं है, बॉडीली फिजिकली वीक तो नहीं है, और माइंड को की वीकनेस को चेक करने के लिए कई साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, उनको आप करवा सकती हैं, जिसके कारण आपको पता चलेगा कि उसके इमोशंस फीलिंग्स में कोई तकलीफ तो नहीं है। फिजिकली वीक होने के कारण भी गुस्सा जल्दी आता है। बच्चा अगर सेकेंड चाइल्ड है, फर्स्ट चाइल्ड है और सेकेंड चाइल्ड आ जाता है घर में, तब भी बड़े बच्चे का गुस्सा बढ़ जाता है। बहुत सारे रीजन होते हैं गुस्से के, तो गुस्सा करने के पीछे जब वो गुस्सा करता है तब हमें उसे विक्टिम नहीं मानना चाहिए। उसके गुस्से का कारण मुझे उसे ऑब्जर्व करके जान लेना चाहिए कि किस कारण से उसे गुस्सा आता है। कभी बच्चे दो तीन बच्चों में कंपैरिजन करते हैं और इसलिए भी उनको जब पता चलता है या महसूस होता है कि मेरे साथ कुछ अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा है पेरेंट्स का और किसी और बच्चे के साथ थोड़ा सा अधिक प्यार से बात की जा रही है, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग उन्हें होती है। पेरेंट्स कभी भी ऐसा नहीं करते हैं, एक बच्चे के साथ कुछ ज्यादा और दूसरे के साथ कुछ कम, लेकिन बच्चे ऐसा सोच लेते हैं कि ऐसा हो रहा है, तब भी उन्हें गुस्सा आता है। कई बार बच्चे उम्र के हिसाब से बाहर जब जाते हैं तो किसी अब्यूज का शिकार होकर आते हैं, कुछ ना कुछ अब्यूज उनको होता रहता है किसी न किसी से, तो वो बोल नहीं पाते हैं, उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तब भी उनको गुस्सा आता है। और कई बार उनकी आदतें शायद हमने बिगाड़ी है, उनको हर चीज मांगने से पहले अवेलेबल करा के हमने उनकी आदतें बिगाड़ दी है, तो वो जिद्दी हो जाते हैं। हर चीज उनको उनके मुताबिक ही होनी चाहिए, चाहे वो खाना हो, भोजन भी वो जैसा चाहते हैं वैसा ही चाहिए, चाहे वो जंक ही क्यों ना हो, और हम शुरू में प्रोवाइड करते आते हैं तो उनको उस चीज की आदत हो जाती है। तो बच्चों के गुस्से में पूरा ही उनका दोष नहीं है, कई सारी बातें हैं, एनवायरमेंट से रिलेटेड है, उनके नंबर बच्चों में उनका नंबर कौन सा है उसके ऊपर डिपेंडेंट है, कुछ अब्यूजिव उनके साथ नहीं हो रहा है स्कूल में या फिर घर में या पड़ोस में, उस पर डिपेंडेंट है। तो इसके लिए सबीता जी से मेरा एक कहना रहेगा कि जब बच्चा खेल रहा है, शांत है और अच्छे मूड में है, तब अक्सर उसके साथ बैठकर आपको बातें करनी चाहिए, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। कोई भी बातें हो, स्कूल की हो, घर की हो, छोटी हो, बड़ी हो, अगर वो शेयर नहीं कर पाता है, क्योंकि अक्सर बच्चे अपनी बातें माँ बाप से नहीं शेयर कर पाते हैं और दूसरों से भी शेयर करने में हिचकिचाते हैं, तो आप अपनी बात शेयर करें कि आज सुबह से मैंने क्या क्या किया, मुझे क्या क्या डिफिकल्टीज आई, मैंने क्या फेस किया, मुझे क्या करना चाहिए था। हमको लगता है कि बच्चे हमें क्या सलाह देंगे, परंतु मैं सभी पेरेंट्स से यही कहना चाहूंगी कि बच्चे जो कुछ आपको सिखाकर जाएंगे शायद आपने उसके बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा। इसलिए बच्चों को आप बहुत ज्यादा लाइट मत लीजिए और उनके साथ अपना कम्युनिकेशन बढ़ाते जाए। तो मेरा सविता जी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपने बच्चे से बात करें, उसके साथ बैठे, टीवी देखते हुए नहीं बैठे या मोबाइल में कुछ काम करते हुए नहीं बैठे, पूरा टाइम उसी के लिए है। जैसे एक काउंसिलर किसी भी व्यक्ति के साथ बैठता है एक घंटा, उसकी पूरी बात सुन लेता है शांति से, कोई भी रिएक्ट किए बिना, किसी भी तरह का जजमेंट दिए बिना, उसी तरह माँ बाप सबसे पहले काउंसिलर होते हैं बच्चों के, वो अपने बच्चों के साथ बैठ जाए और वो जो कुछ भी बोले, अनाप शनाप भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, उसी में उसका गुस्से का कारण छिपा हुआ होगा, इसीलिए आपको उसे पेशेंटली सुनना होगा बिना जज किए। और जब आप दो चार बार उसको बिना जज किए उसकी सारी बातें केवल सुनेंगे, उस पर कोई रिएक्शन नहीं देंगे, तब वो आपके साथ बातें करने में इजी फील करेगा और फिर आप देखेंगे चमत्कार कि कुछ भी हो जाएगा वो सबसे पहले आपके पास दौड़कर आएगा और आपसे बात शेयर करेगा। फिर आप उनको ट्रेन कर सकते हैं कि आप बहुत ज्यादा गुस्सा करते हो, ये बात उनको बतानी होगी कि आप बहुत ज्यादा गुस्सा करते हो, ये नॉर्मल नहीं है और आपको नॉर्मल बनना पड़ेगा, थोड़ा कम गुस्सा करते करते धीरे धीरे गुस्से को खत्म करने होगा। जब हम बच्चों को अवेयर कराते हैं कि गुस्सा कितना हानिकारक है, जिसके कारण हमें भी गुस्सा आता है और हम भी आपको प्यार नहीं कर पाते हैं या आपसे नाराज हो जाते हैं, तो आप जब गुस्सा नहीं करेंगे तो हमें आपकी बात समझने में बहुत आसानी होगी। इसलिए प्लीज आप गुस्सा किए बिना आप अपनी बात अगर कहेंगे तो हम उसको मानेंगे और समझेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको प्रोवाइड करें। तो इस तरह से गुस्से के बारे में उनको अवेयर कराएंगे और उनको कहेंगे कि अगली बार जब आप गुस्सा नहीं करेंगे तब हम आपकी बात मानेंगे। तो इस तरह से बच्चे बहुत जल्दी ट्रेन हो जाते हैं और उनकी गुस्से की आदत को हम कम कर सकते हैं।
जी, इससे पहले कि मैं अगला सवाल लूं, आप जो बात कह रहे थे उसमें मैं एक छोटी सी चीज मेरे ध्यान में आई। मेरे एक दोस्त हैं, उनका बेटा सिर्फ 1 साल का है और 1 साल का बच्चा है वो कुछ अभी बोलता नहीं है, पता है हम सबको, बट फिर भी जब भी वो उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, अगर किसी का फोन आते हैं तो फोन आंसर नहीं करते।
नहीं करती।
वो ये कहते हैं कि वो मैं पूरा टाइम उसको दे रहा हूं और अगर कोई अर्जेंसी बात होती है, अगर कोई लगातार फोन करता है तो फोन उठाते हैं और वो बताते हैं कि मैं अभी इसके साथ हूँ, मेरे बच्चे के साथ हूँ, अगर कुछ अर्जेंट नहीं है तो फिर मैं 1 घंटे बाद बात करूंगा, जैसे मैं फ्री फोन का बात करूँ। तो छोटे बच्चों के लिए जो आप फुल टाइम देते हैं कि आप बिजी नहीं है, आप ऑक्यूपाइड नहीं है, आपका ध्यान बट नहीं रहा है, वो अटेंशन देने नेचुरली वो बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनती है। और आजकल हम सब लोग चलते फिरते कम्युनिकेशन गैजेट्स के साथ चल रहे हैं तो हमारा ध्यान आसानी से भटक जाता है, तो इसके लिए कॉन्शियस एफर्ट करने की जरूरत है। और बहुत अच्छी बात आपने कही कि हम बच्चों को हल्के में नहीं लें, उनको भी हम एडल्ट जितना ही टाइम दें उनके भी उतने ही रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करें, उनके टाइम और उनकी बातचीत में पूरा कॉन्ट्रीब्यूट करें। एक और सवाल है दीदी जो अभी हमारे पास आया है, शुभा चाहर जी ये सवाल पूछती है। शुभा जी का सवाल है कि अपने लव्ड वंस की अनटाइमली डेथ के बाद ग्रीफ और डिप्रेशन से कैसे बाहर आए। ये एक ऐसा सिचुएशन है जो आजकल बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। मेरे कनेक्शन में जितने लोगों को मैं जानता हूँ वहां पर या तो मेरे कोलीग हैं या फिर मेरे फ्रेंड्स हैं जिनकी जान पहचान मेरे से है, कहीं ना कहीं किसी न किसी अपने लव्ड वन को किसी ने खोया है पिछले 2 महीनों में। और जरूरी वजह नहीं कि वो कोई कोविड के इन्फेक्शन से उनकी डेथ हुई, वो अदरवाइज के नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में उनकी डेथ हुई, एज रिलेटेड है, एक्सीडेंट से है, ऐसे बहुत सारी चीजें हुई है। तो ऐसे टाइम पे जब आपके पास फ्रेंड्स का या फैमिली का सपोर्ट मैकेनिज्म नहीं है, जहां पर लोग ग्रीफ शेयर करने के लिए आपके पास लोग आ नहीं पाए हैं, फ्यूनरल्स में भी लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं, तो ऐसे टाइम पे ग्रीफ जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है और ये अनटाइमली सिचुएशन है। तो ऐसे टाइम पे जो ग्रीफ है वो बहुत जल्दी डिप्रेशन का रूप ले लेता है, तो ग्रीफ से और डिप्रेशन से कैसे बाहर आ सकते हैं। शुभा जी का एक सवाल सप्लीमेंट किया है उन्होंने, वो पूछते हैं कि क्या मृत्यु का समय प्रीडेस्टिन होता है, क्या पहले से मृत्यु का समय तय होता है।
इसी बात पर मैं आने वाली थी शुभा जी, कि जन्म और मृत्यु ये दो जीवन की इतनी सच्चाइयां है, जरूरी सच्चाइयां है जिसके जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। जन्म और मृत्यु किसी के भी हाथ में नहीं है, वो कब होगा इसके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट कई ज्यादा है जिस पर हम चिंतन कर सकते हैं। डेथ केवल शरीर की होती है ना कि आत्मा की होती है। आत्मा हमेशा ही अमर है, अजर है और दूसरा शरीर धारण करती है। तो हमारे साथ किसी व्यक्ति का कितना लंबा साथ हो सकता है ये हम डिसाइड नहीं करते हैं। डेथ प्रीडेस्टिन्ड ही होती है और उसे अपने समय पर आना ही है। बेहतर है कि हम जीवन के इस सफर में चलते हुए जिन लोगों का साथ हमें मिला है उनके साथ हम एंजॉय करने की आदत डालें और जो जो हमारे जो जिन्होंने हमारा साथ छोड़ा है उनको भूलने का प्रयास करें। उनकी कमी तो हमें महसूस होंगी ही, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है क्योंकि उन्होंने जो हमारे साथ टाइम स्पेंड किया वो बहुत अच्छा था। तो हमें ये करना चाहिए ग्रीफ को ओवरकम करने के लिए, हमने उनके साथ जितना भी टाइम स्पेंड किया उस अच्छे समय को याद करें और ये महसूस करें कि उस अच्छे मेमोरीज के साथ वो हमेशा हमारे साथ है। फिजिकली नहीं है परंतु मेंटली और स्पिरिचुअली वो हमारे साथ। ये पहली बात ग्रीफ को ओवरकम करने के लिए। दूसरी बात, अक्सर जो हमारे हमें छोड़कर चला जाता है हमें उसकी ही ज्यादा याद आती है, परंतु जो लोग हमारे साथ है हम उनका इतना ज्यादा महत्व नहीं रखते हैं या उनको इतना महत्व नहीं देते हैं। समझो कि आपके घर से कोई आपका बेटा जो कम उम्र का है वो चला गया, परंतु उसको जाना ही था, उसकी डेथ तो निश्चित थी, उसका सफर आपके साथ उतना ही था। आप उसकी याद में इतने खो जाते हैं कि आपके आसपास आपके हस्बैंड है या हस्बैंड के माता पिता है जो ओल्ड एज के हैं, जिनको मेरे अटेंशन की जरूरत है, मैं उन लोगों को नेग्लेक्ट करती हूँ और अपने ही दुख के जो गहरी खाई है उसमें डूबी रहती हूँ। ये गलत है। जो लोग छोड़ के गए हैं उनको हमें बाय बाय कहना, उन्हें विदा देना सीखना होगा, क्योंकि अभी ऐसा समय ऐसा मौका हमारे पास बहुत बार आएगा कि हमारे आसपास के जिनको हम बहुत प्यार करते हैं वो लोग हमें छोड़कर जाएंगे, हम उसकी प्रैक्टिस करें। और जो लोग हमारे साथ है हम उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, उनकी आवश्यकताओं को समझें, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करें, उनकी केयर करें, उनके लिए कंसर्न रखें। वो जो आप करेंगे वो आपके मन को डाइवर्ट करेगा और उस व्यक्ति की याद धीरे धीरे आप कम कर पाएंगे। और समय हर चीज की दवा है। जब शरीर छोड़कर कोई जाता है उसी समय थोड़ा समय 6 महीना तक आपको ग्रीफ का एक्सपीरियंस होता है, होना भी चाहिए, परंतु ये भी एक इमोशन है जिसे हमें नॉर्मली एक्सप्रेस करना चाहिए, परंतु उसके बाद हमें उसे ओवरकम करने की आदत डालनी ही होगी। हो सकता है किसी ने शरीर छोड़ा, परंतु यहाँ मेरे पास हर रोज ऐसे भी यंगस्टर्स आते हैं जिनका ब्रेकअप होता है, शरीर छोड़कर नहीं गया है व्यक्ति, बट उन्हें छोड़कर गया है, तो उस ब्रेकअप को भी वो कैरी नहीं कर पाते हैं और 2-3 साल तक उस ग्रीफ में रहते हैं, ब्रेकअप के ग्रीफ में रहते हैं। तो उनको भी समझाना पड़ता है कि भाई तुम्हारा सफर है ये जिंदगी का, तुम्हें अकेले चलना है, जो लोग तुम्हारे साथ जुड़ जाएंगे जब तक जुड़े हैं तब तक मजे करो उनके साथ, एंजॉय करो, और जब चले जाएंगे छोड़कर तो उनको टाटा बाय बाय करके उन्हें भूल जाओ, और आगे जो लोग जुड़ेंगे उनके साथ एंजॉय करो। तो ये चीज भी तब हो सकती है जब आपका खुद के साथ कनेक्शन बहुत पक्का हो। जब हम खुद से लॉस्ट होते हैं तब हमें दूसरों के सपोर्ट की या उनके साथ की आवश्यकता होती है। जब हम खुद से कनेक्टेड होते हैं, खुद से प्यार करते हैं, तब जो है हमारे साथ उनके साथ हम एंजॉय करते हैं, और जो छोड़कर चले जाते हैं, जीवन की सच्चाई है मृत्यु, तो जाना तो है ही, तो उनको हम बहुत अच्छे से विदा भी करते हैं और याद भी करते हैं उनको, तो खुशी से, गम से नहीं। तो इसके लिए भी बेसिक जो आपकी प्रैक्टिस है वो है पॉजिटिविटी की प्रैक्टिस। हर चीज में कुछ कल्याण है, कुछ अच्छा है। और अगर कोई छोड़कर चला जाता है तो अपने आप से सवाल पूछे कि मैंने उसके साथ अच्छा समय ज्यादा बिताया था या कड़वाहट भरा समय ज्यादा बिताया था। अगर नहीं तो आगे चल के अपने आप में सुधार लाए।
ये बात आपने बहुत अच्छी कही, हालांकि ये बहुत ही सीरियस सा मुद्दा था कि जब डेथ को डील करना है, ग्रीफ को डील करना, हम में से बहुत सारे लोग बाय बाय कहने की आदत नहीं रखते हैं, हमें लेट गो करना, किसी को जाने देना, ये सीखने की जरूरत है, ये हमें पकड़ के रखने की आदत हो जाती है बहुत बार। और जीवन के सफर में बहुत सारे लोग आते जाते हैं, ये चीज समझ कर, ये चीज अगर बार बार याद दिलाते हैं तो इन्हें डील करना आसान हो सकता है। मैं समझता हूँ ये बहुत ही गहरी बात है जो आज आपने कही है, और ये प्रैक्टिस के साथ आता है, पॉजिटिविटी के प्रैक्टिस के बाद। नवीन बैरवा एक सवाल पूछते हैं, फेसबुक से ये लाइव देख रहे हैं, फेसबुक और यूट्यूब पर ब्रह्मा कुमारी के चैनल पर लोग इसे लाइव देख पा रहे हैं। अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं। अगर आपको कुछ प्राइवेट सवाल है जहां पर आप नाम नहीं बताना चाहते अपना, तो आप ईमेल कर सकते हैं सोशल मीडिया @ब्रह्मा कुमारी.com पर, जहां पर हम आपके नाम को प्राइवेट रखेंगे और वो सवाल पूछेंगे हमारे स्पिरिचुअल मास्टर से। नवीन वर्मा जी का सवाल है, वो कहते हैं लोग क्या कहेंगे। मैम गिव सम एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस। जब भी आपने चेंज लाने की कोशिश करते हैं तो ये थॉट हमेशा मन में आता है कि लोग क्या कहेंगे। तो ये सही में एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कभी कभार, ये सोचना कि लोगों के मन में क्या ख्याल उठेगा मैं ऐसा करूं।
हम इस बात से कम कंसर्न रखते हैं कि हमें कैसा लगता है, लेकिन इस बात का कंसर्न हमें थोड़ा ज्यादा होता है कि लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे लोग अगर मैं ऐसा चेंज अपने आप में लेके आ जाऊंगा। नवीन खैर अभी कुछ दिनों से मेडिटेशन सीख रहे हैं और उनको भी ऐसा लग रहा है कि अगर मैं ये मेडिटेटिव लाइफस्टाइल अगर अडॉप्ट करूंगा तो लोग मेरे आसपास के क्या कहेंगे कि ये तो बदल गया, मैं अच्छे के लिए बदला हूं, मेरा अच्छा हो रहा है, मुझे बेनिफिट हो रहा है, बट मैं बदल रहा हूं, इससे लोगों को थोड़ा सा अटपटा लगता है। तो नवीन से मेरा यही कहना है, लोगों की चिंता करना छोड़ दो, आपको जिससे बेनिफिट हो रहा है, आपको जो चीज अच्छी और सही लग रही है उसे करने की हिम्मत रखो। हिम्मत रखने से हम अपनी बात पर कायम रखेंगे। मुझे याद है कोई हमारी महिलाएं आई थी जिन्होंने कहा कि अगर हम स्विमिंग करना चाहते हैं पर हम स्विमिंग के लिए जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, हमारे घर वाले क्या कहेंगे। मैंने कहा आपको अच्छा लगता है ना तो आप कीजिए, दूसरों के बारे में ये मत सोचिए, बेनिफिट तो आपको मिलने वाला है। वैसे ही नवीन जैसे यूथ जो है वो जब कुछ अच्छा चेंज अपने आप में लाते हैं तो लोग क्वेश्चन मार्क उठाते हैं, परंतु नवीन जैसा व्यक्ति अगर किसी के संग में आकर कोई गलत काम करता है तब वो अच्छा है, या फिर कोई अच्छी चीज अडॉप्ट करता है और चेंज लाता है अपने आप में वो अच्छा है। हम देखते हैं हमारे यूथ बहुत जल्द संघ के प्रभाव में आकर गलत आदतों को अपना लेते हैं और एक बात कोई बार कोई आदत उनको पड़ जाती है तब उसे छुड़ाने के लिए हमें कितनी मुश्किल लगती है ये हमें पता है हमें और उनके पेरेंट्स को, उनको खुद को भी मुश्किल होती है उसे छुड़ाने के लिए। तो अच्छी आदतें हमेशा बनानी चाहिए और अगर उसके लिए कोई कहे वाह देखते हैं दो चार दिन से सुबह जल्दी उठ रहे हैं, दो चार दिन से मेडिटेशन कर रहे हैं, दो चार दिन से एक्सरसाइज कर रहे हैं, देखते हैं कितना दिन चलेगा, लोग ऐसा कहते हैं हमें पता है ये बहुत जल्द छोड़ देगा, क्योंकि वो खुद नहीं कर सकते हैं तो आपको डिस्करेज करने की हर कोशिश, संभव कोशिश वो जरूर करते हैं। इसलिए उनकी चीजों को तवज्जो ना देकर हम अपने आप में खुद को संवारने में लग जाए और ये ना सोचे कि वो क्या सोचेंगे, मैं क्या सोचता हूँ, ये इम्पोर्टेंट है।
जैसे आपने ये बात कही, एक और हमारे व्यूअर हैं उन्होंने भी लिख के भेजा है कमेंट, वो कहते हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। देविका टंडन जी हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उन्होंने ये भेजा है। ये सही में एक समस्या है, जब आप पॉजिटिवली ही कुछ बदलने की कोशिश करते हैं तो अक्सर हमें लोगों की बात पे तकलीफ होने लगती है कि लोगों की सोच में बात। शुभा चहर जी आपके फीडबैक के लिए, फीडबैक दे रहे हैं आपने जो कहा उसके लिए थैंक यू कह रहे हैं। मैं समझता हूँ थैंक यू कहने के लिए बहुत सारे लोग हैं। सविता श्रीवास्तव जी भी कहते हैं थैंक यू सिस्टर, मैं पटना बिहार में रहती हूँ और मैं यहाँ के सेंटर पर जाऊं या किसी से मिलूं तो मुझे सही राह दिखाए इसके बारे में भी पूछते हैं। बिल्कुल आप जा सकते हैं सविता जी का इसके लोकल सेंटर पे। अभी तो फिलहाल लॉकडाउन के चलते बहुत सारी जगह हमारे सेंटर्स खुले नहीं है, गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शन को फॉलो किया जा रहा है, बट आप वर्चुअली ब्रह्मा कुमारीज के मेडिटेशन कोर्सेज को ऑनलाइन इंटरनेट पे सीख सकते हैं, यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस हैं वहां पर आप जुड़ सकते हैं और फेसबुक पर हम लाइव जुड़ने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये डिमांड की थी कि हमारी बातचीत डायरेक्टली हो सके हम स्पिरिचुअल मास्टर से मिल सकें। अमृता पांडे जी भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हैं और अप्रिशिएट करते हैं कार्यक्रम को लेकर। मैं समझता हूँ बहुत सारे ऐसे सवाल और भी हैं जो हमें लेने की जरूरत है, बट हम ऑलमोस्ट 50 मिनट्स तक आ चुके हैं, हमें लाइव मेडिटेशन भी करना है। मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो आपने अभी बातें कही थी ये पॉजिटिव चेंजेस हमारे अंदर लाने की हमें आवश्यकता है। जैसे आपने कहा कि कुछ लोग डिस्करेज कर देते हैं कि भाई देखते हैं कितना टाइम चलेगा तुम्हारा ये पॉजिटिव चेंज, कितना टाइम मेडिटेशन कर लोगे, कितना टाइम तुम एक्सरसाइज कर लोगे, कितना टाइम जल्दी उठोगे, कितना टाइम हेल्दी डाइट खाओगे, देख लेंगे हम भी। तो इससे बहुत सारे लोग अच्छी कोशिशें कर रहे हैं, लॉकडाउन में बहुत सारे लोग मेडिटेशन सीख रहे हैं, डाइट प्लान चेंज कर रहे हैं, अपना लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हैं, तो ये अच्छी कोशिशें लोग कर रहे हैं बट बीच बीच में वो पटरी से उतर जाते हैं, दो तीन दिन किया फिर एक दिन छूट जाता है, सुबह जल्दी उठ रहे थे 6 बजे का अलार्म बज रहा था फिर पता चला चौथे दिन सीधे 9 बजे उठे, तो इसकी वजह से खुद ब खुद भी हम बहुत बार डिस्करेज हो जाते हैं कि अब देखो लोगों को कहने का मौका मिल गया तो देख लिया है हमने। कभी कभार घर के सदस्य ही आपको कहने लगते हैं अच्छा क्या चल रहा था तुम्हारा, वापस आ गए तुम लाइन पे। तो इन चीजों से कैसे डील करें हम अपने आप को?
चैलेंज ले आप, लोग जब जितना लोग कहेंगे ना उतना हम खुद के लिए चैलेंज एक्सेप्ट करें और इनफैक्ट हम उनको सामने रखें। जो लोग ये कहते हैं ना कि देखते हैं कितना समय करेंगे, उनको ही सामने रखें हम और उनके चैलेंज को पूरा करने के लिए डिटर्मिनेशन लेके आए अपने आप में कि मुझे उनको दिखाना है कि मुझे मैं ये रेगुलर कर सकता हूँ। तो ऐसे लोगों को अपने आसपास जरूर रखिए, जैसे कहा है ना कबीर ने निंदक लिए रे राखिए आंगन कुटी बिछाए, मतलब ऐसे निंदक लोग जब आसपास होंगे तब हम अपने आप में डिटर्मिनेशन ला सकते हैं। ये बच्चों वाली बात है कि हमें मोटिवेशन जो मिलता है वो सेल्फ मोटिवेशन से हम ज्यादा आगे बढ़ते हैं, परंतु ऐसे लोग भी जो हमें डिस्करेज करते हैं उनका चैलेंज हम एक्सेप्ट करके उनको करके दिखा सकते हैं। तो ये चैलेंज के साथ हम बहुत अच्छी तरह से अपनी दिनचर्या को कंटिन्यूअसली फॉलो कर सकते हैं।
जी, यूट्यूब पे भी सोनू फुटेला जी थैंक यू कह रहे हैं और यूट्यूब पे भी बहुत सारे कमेंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं। मैं आप सभी का थैंक यू कहता हूँ कि आप सभी लोग फीडबैक भी लिखते हैं, कमेंट्स भी लिखते हैं। हम सारे कमेंट्स नहीं पढ़ पाते क्योंकि सिर्फ एक घंटे का टाइम होता है, बट बाद में इन कमेंट्स को जरूर कलेक्ट किया जाता है, हम आपके फीडबैक्स को अप्रिशिएट करते हैं। सिर्फ कोशिश ये रहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा सवाल लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिले। ये लाइव पेशकश है तो लाइव में मोर पीपल कैन कनेक्ट, मोर पीपल कैन आस्क क्वेश्चन, तो ये हमारी कोशिश रहती है। एक और सवाल आया था जो ये था कि हम अपने स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए अपने मन की शक्ति को, मन को ताकतवर कैसे बनाएं। पिछले कुछ दिनों में ये सवाल आया भी है, लोग फिजिकल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तंदुरुस्त तो हो रहा है बट मन दुरुस्त कैसे हो, तो मन को दुरुस्त करने के लिए, मन को शक्तिशाली करने के लिए क्या किया जाए, ये सवाल।
दो बातें हैं इसके लिए। पहली बात तो ये है कि जैसे अगर आप मान लीजिए कि आपका मन आपका छोटा सा बच्चा है, जैसे हमने बच्चों को डील करने के लिए कहा था कि बच्चों को डील करना है तो बच्चों के साथ बैठना होगा, आपको उनसे बातें करनी होगी, उनकी बातें सुननी होगी, वैसे ही आपका मन अगर आपका छोटा बच्चा है तो रोज आपको आपके मन के साथ थोड़ा टाइम बैठना होगा, उनके मन के साथ बातें, अंदर ही अंदर बातें करनी होगी खुद से, और उसे ट्रेन करना होगा, उसे टीच करना होगा, उसे कहना होगा कि तुम्हें ये प्रैक्टिस अपने आप में डालनी है। तो अपने मन के साथ बैठकर बातें करें। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मेडिटेशन का जो पहला और फॉरमोस्ट स्टेप है और जो बहुत सिंपल है, रोज मुझे पॉजिटिव सोचने की प्रैक्टिस करना है। नेगेटिविटी अपने आप आ जाती है, नेगेटिव सोचने के लिए मुझे सोचना नहीं पड़ता है, वो थॉट्स तो बल्क में आ जाते हैं, लेकिन पॉजिटिव सोचने के लिए मुझे थोड़ा सा स्पेशल एफर्ट करने पड़ते हैं। इसलिए मुझे रोज की आदत में डालना है, अपने मन को आदत डालनी है कि मुझे पॉजिटिव ही सोचना है, हर नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी देखनी है, हर बुराई में अच्छाई देखनी है, हर गलती में जो मैंने की है उससे मैंने क्या सीखा है ये मुझे अपने आप से पूछना है। तो जब हम पॉजिटिव सोचने की प्रैक्टिस करते हैं तो मन हमारा दोस्त बन जाता है और जो हम उसे कहते हैं करने के लिए वो करने लगता है। हम यहाँ आने वाले लोगों को ये तो प्रैक्टिस कराते ही हैं, बट रिलैक्सेशन में जब आप मेंटली और फिजिकली रिलैक्स होते हैं और अपने माइंड को जो भी अफर्मेशन देते हैं या ऑर्डर्स देते हैं, उस समय माइंड आपकी सारी ऑर्डर्स को एज इट इज फॉलो करने के लिए रेडी होता है, बट जब आप फिजिकली और मेंटली रिलैक्स होते हैं तब। इसे आप सेल्फ टॉक या सेल्फ मोटिवेशन कह सकते हैं। पहले आपको मेंटली और फिजिकली खुद को रिलैक्स करना होगा, जो मेडिटेशन के थ्रू आप कर सकते हैं, और फिर आप अपने मन को जो भी ऑर्डर दे वो उसे फॉलो करेगा एज इट इज जैसा आपने दिया है। तो पॉजिटिव सोचना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, मन को अपना दोस्त बनाकर उसके साथ रोज बैठकर बातें करनी है, उसको अपना छोटा बच्चा मानकर उसे उसकी बातें सुननी है और उसे कन्विंस करना है पॉजिटिविटी के लिए। एंड देन जब आप रिलैक्स है मेंटली और फिजिकली तो कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन को रिपीट करके आप मन को वो करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।
तो मैं ये बात कह रहे थे अपने आप को प्रेरित करने के बारे में। बहुत सारे लोग ये करके भी देखना चाहेंगे।
बिल्कुल
मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप हमें प्रैक्टिकली मेडिटेशन का प्रैक्टिस करवाएं, कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन हमें दे ताकि हम ये हर दिन घर में कर सकें। वक्त तो ये कह रहा है कि ऑलमोस्ट 12 बजने को है और अब हम मेडिटेशन के साथ इस प्रोग्राम को क्लोज करना चाहेंगे। हर दिन हमारी कोशिश रहती है कि हम आपके साथ जुड़ें और आपके सवालों का जवाब हम दे सकें। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जिनके सवाल आए हैं बट वी कुड नॉट आंसर ऑल दोस क्वेश्चंस बिकॉज़ देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ टाइम। मैं फिर भी कोशिश ये करता हूँ कि जब सवाल आते हैं तो उसको बाद में कोलेक्ट करें और अगले दिन प्रोग्राम में भी उसे पूछें। तो आप घबराएं नहीं, अगर आपका सवाल नहीं आया है या नहीं आंसर दिया गया है, लिया नहीं गया है, तो उसे हम कल के लिए आज ये एपिसोड के लिए हम जरूर लेने की कोशिश करते हैं। आज आप सभी लोग जुड़े, आप सबने इतने अच्छे मैसेजेस भेजे, आपने अपने फीडबैक्स शेयर किए, क्वेश्चन शेयर किए, तो हमारे सभी दोस्तों का धन्यवाद जो सोशल मीडिया पे हमारे साथ जुड़े हैं, फेसबुक पे और यूट्यूब पे लाइव ये प्रोग्राम देख रहे हैं। हम आगे फिर अभी कोशिश में आपके साथ फिर जुड़ेंगे। कल सेम टाइम क्योंकि वीकेंड है तो सैटरडे और संडे के लिए हम 11 और 12 के बीच में मीटिंग फिर मुलाकात होगी। दीदी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, डॉक्टर कल्पना दीदी जी हमारे साथ जुड़े, ग्लोबल हॉस्पिटल नॉन डायबिटीज ग्रो स्पिरिचुअल और वेलबिंग काउंसलर हैं और उन्हें बहुत प्रैक्टिकल चीजें हमारे साथ शेयर की। तो दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
थैंक यू।
अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो होमवर्क है जो हम प्रैक्टिकली करके देखें, वो पॉजिटिव अफर्मेशन को प्रैक्टिस करें और मेडिटेशन भी प्रैक्टिस करें, उससे हम इस प्रोग्राम को क्लोज करेंगे।
मैं हमारे फ्रेंड्स से यही कहना चाहती हूँ कि जब भी हम मेडिटेशन के लिए बैठे तो सबसे पहले फिजिकली रिलैक्स करना खुद को बहुत जरूरी है, इसलिए अपना सिटिंग अरेंजमेंट देख ले। जहां पर भी आप बैठे हैं वहां बहुत रिलैक्स होकर कमर, पैर, कंधे, गर्दन आदि को बहुत अच्छे पोस्चर में बैठ जाए जिससे कि आपको रिलैक्सेशन फील हो। और जब हम मेडिटेशन की शुरुआत करते हैं अगर हम उसे ब्रीदिंग के साथ शुरू करें, गहरी और लंबी सांस लेते हुए हम धीरे धीरे एक एक सांस को अपने भीतर महसूस करते हुए भीतर ले और बाहर छोड़े, तो मैं अभी थोड़ा धीरे से बात करूंगी। जो जो हम कहेंगे आप अगर फॉलो करेंगे तो उसके साथ आपको रिलैक्सेशन का भी अनुभव होगा और स्लोली हम पॉजिटिव अफर्मेशन के तरफ बढ़ेंगे। तो गहरी और लंबी सांस लें। डीप ब्रीदिंग, इनहेल स्लोली एंड स्लोली एक्सहेल। सांसों के साथ एक अभ्यास को हम जोड़ें। जब भी सांस भीतर ले तो महसूस करें कि वातावरण में जो भी पॉजिटिविटी है, एनर्जी है, उस सब को मैं अपने भीतर प्रवेश होने दे रहा हूं। और जब भी हम सांस छोड़ें तो ये महसूस करें कि मेरे मन में और शरीर में जो भी टॉक्सिन्स है, नेगेटिविटी है, उनको मैं रिलीज कर रहा हूं। पहले कुछ सांसों तक हम ये अभ्यास करें, गहरी सांस लेते हुए पॉजिटिविटी इन, गहरी सांस छोड़ते हुए पॉजिटिव नेगेटिविटी आउट। गहरी और लंबी सांस लेते हुए अपने मन और शरीर को रिलैक्स करें। सब बातों को भूल जाए, अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करें आज्ञा चक्र के ऊपर मस्तक के बीच में। और महसूस करें कि वहां जो मस्तक के बीच में आंखों के पीछे जो एनर्जी है वो पॉजिटिविटी का सोर्स है। गहरी और लंबी सांस लेते हुए उस पॉजिटिविटी के सोर्स को, खजाने को महसूस करें। शरीर के रिलैक्सेशन के साथ शरीर को भूलते जाएं और उस एनर्जी पर अपने माइंड का पूरा फोकस करें। अपने आप से एक सवाल पूछें, मैं कौन हूं, मैं अपने आप को किस तरह से जानता हूं, मैं एक पॉजिटिव एनर्जी हूं और उस एनर्जी का सोर्स मेरे भीतर मस्तक के बीच में आंखों के पीछे विराजमान है, जहां से प्योर एंड पॉजिटिव एनर्जी हर वक्त प्रवाहित होती रहती है। अपने मस्तक के भीतर से उस पॉजिटिव एनर्जी को अपने सारे शरीर में फैलता हुआ महसूस करें। मन में ये विचार दोहराए, वो पॉजिटिविटी की एनर्जी जो मैं जनरेट कर रहा हूं भीतर से, वो मेरे सारे जीवन का आधार है, फाउंडेशन है। मैं जब भी अपनी एनर्जी को एक्सटेंड करता हूं, चाहे वो रिलेशनशिप में, चाहे अपने प्रोफेशन में, चाहे सोसाइटी में, चाहे प्रकृति के किसी भी प्रकार की चेंज के साथ, उस पॉजिटिव एनर्जी को मैं जब इस्तेमाल करता हूं, तो रिटर्न में मुझे बहुत कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलते जाते हैं। मेरे भीतर की पॉजिटिव एनर्जी का जो पहला एक्सप्रेशन है, जो मेरे चेहरे पर आता है, वो है मेरा ब्यूटीफुल स्माइल। मैं भीतर से पॉजिटिव हूं, इसकी पहली निशानी जो स्माइल है, उसे एक्सप्रेस करने में मैं कंजूस नहीं बनता, लेकिन खुले दिल से हर वक्त मुस्कुराते हुए हर एक व्यक्ति के साथ, हर एक परिस्थिति के साथ पेश आता हूं। मेरे पॉजिटिविटी का दूसरा एक्सप्रेशन जो मैं अपने बॉडी से एक्सप्रेस करता हूं, वो है लाइटनेस और इजीनेस। बात या व्यक्ति कितनी भी बड़ी हो, लेकिन मैं उसे लाइट और इजी कर देता हूं। प्रॉब्लम और व्यक्ति के बारे में ना सोचकर मैं उसके समाधान और उसमें से लर्निंग के बारे में सोचता हूं। गहरी और लंबी सांस लें और इन दो थॉट्स को अपने में रजिस्टर करें, बार बार दोहराएं और शुरुआत इन दो बातों से करें, स्माइल एंड पॉजिटिव रिस्पॉन्स। धीरे धीरे आप बहुत सारी बातें अचीव करते जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।